बहुत आसानी से किसी के बारे में फैसला किया जा सकता है, बुरा या अच्छा। और आदमी सोचता रहता है, खुदा वो सामने वाला सोचता रहता है कि ये क्या हुआ हमारे बारे में, तो ये चीज़ जो मशहूर हो गई है, बुरी या अच्छी ये खसूसियत तो हम में है नहीं। तो यकीनन उसमें दूसरों का सही फैसला करना और सही राय देना बहुत ज़्यादा मुआसर है। आज खुदा ने एक और मौका फराहम किया है और एक और सुबह हम लोगों को देखने को मिली है, तो आइए कोशिश करें कि दूसरों के बारे में सही फैसला करें और दूसरों के बारे में कम से कम ये करें, अगर फैसला नहीं कर सकते, राय नहीं दे सकते, तो यानी उसको हम लोग सही राय दें और उसके बारे में दूसरों से अच्छी बातें करें। तो प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में खुश आमदीद, आज का प्रोग्राम भी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूदो सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत सुबह में और प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में।
बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज बड़ी खूबसूरत बात हसन ने प्रोग्राम की शुरू में की, और ये शुरू की बातें जो हैं इस पर आप यकीन माने कि दो दो घंटे बैठ के जो है हम लोग इस पर सोचते हैं कि प्रोग्राम को जो शुरू किया जाए किस बात से शुरू
तो
किया जाए,
आखिर में वो भी नहीं हो पाता, वो जो चीज़ कहना चाहते हैं आखिर में वो भी मुश्किल
कुछ
होते
और बन
जाता है।
जाती
हाँ
है।
बिल्कुल
बारह,
बिल्कुल
लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात की कि अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे बात कामों के बारे में बात करनी चाहिए। यही बात मेरे जहन में भी थी, और वो ये थी कि अक्सर हम लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं दूसरों के बारे में बात करते हुए, या दूसरों के बारे में राय देते हुए, या दूसरों के पीठ पीछे बात करते हुए। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि क्या हम कुछ अच्छी, कहते हैं जैसे हॉबीज़ होती हैं, कुछ ऐसे मज़े के काम जो हैं उनको इंतखाब करें और वो कर लिया करें जब हम फारिग हैं, बजाय इसके कि हम लोगों के बारे में बात करें।
बिल्कुल, उसमें ये होता है कि हम लोगों को तो कोई फ़ायदा पहुंचना नहीं है, और
बिल्कुल
क्योंकि हम उस शख्स के पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो उसको भी यकीनन हम लोग फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। मजहबी लिहाज से भी
बिल्कुल सही,
यकीनन उसको रोका गया है।
बिल्कुल
और अगर आप यानी हमारे मुआशरे के लिहाज से देख, किसी भी मुआशरे को देख लें, ये काम वो लोग नहीं करते। और अगर कामयाब मुआशरों को आप देखें, जितने भी हैं,
सही
मैं दुनियावी चीज़ों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो कामयाब मुआशरे हैं इस वक्त, वो लोग इसके पीछे जाते ही नहीं, यानी
हाँ
जो आप कहेंगे
बिल्कुल
उसी के बिना पर वो फैसला करेंगे।
सही आपने बात की, ये कि वो बैठ के सोचें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में, जो है वो इतना वक्त जो है जाए, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए इन बातों में। बहरहाल बहरहाल आप लोगों की खिदमत में हम लोग हाज़िर हैं। हमारे साथ जो हफ्ते का मौजू, आज आखिरी दिन है उसका, राय देना दूसरे लोगों के बारे में, सही गलत, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। और हमारे फ़ोन पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज रिकॉर्डर के ज़रिए बता सकते हैं, और सारे ज़रिए जो हैं आप लोगों को मालूम है।
इसके
जी
अलावा एक चीज़ मैं शुक्रिया अदा करता चलूँ अपने नाज़रीन का, खुसूसा उन लोगों ने जो हम लोग का वाकई दिल बढ़ाया। बराए रास हम लोगों का रब्ता हुआ था यानी इसी हफ्ते के दौरान मशहद
मशहद से, जी
मुकद्दस से,
बिल्कुल
और बहुत ही बहरहाल उसमें लिखा था कि हम लोगों के लिए दुआएं की हैं लोगों ने, और अपने
बहुत
अली
अच्छा
नादिर साहब ने और कई
जी,
लोगों ने वो लिखा था।
बहुत बहुत
बहरहाल
शुक्रिया,
उनके बुजुर्गों की दुआएं हम लोगों के शामिल हाल
बहुत
हैं। बहुत
शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आपका। तो चलते हैं, कैसे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं प्रोग्राम के दौरान या प्रोग्राम के बाद, मुलाहिज़ा फरमाइए। चलें फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। थोड़ी देर के अंदर हम लोगों को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर उस्मान खालिक, बहुत ही ज़बरदस्त उनके मशवरे रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यानी जो चीज़ें टिप्स बताते हैं जो हम लोगों को यानी वाकई अगर हम लोग अपने सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका ख्याल रख लें जो चीज़ डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो वाकई मेरे ख्याल में हम लोगों की जो जिस्मानी ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी
बन जाती
गुजरेगी
है। और
यकीनन।
इसमें एक जो चीज़ है, अगर थोड़ा सा ख्याल रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा ये रियायत कर लें कि अगर हमें नमक पसंद है खाने में बहुत ज़्यादा, तो बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ा सा कम डालें, थोड़ा सा उसका मज़ा जो है वो तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस थोड़े से मज़े की तब्दील होने की वजह से शायद जो है हम बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएं।
उसमें वही है कि किसी ने कहा था आज से शायद एक दो बार, मैं कह भी चुका हूँ प्रोग्राम ने, कि अल्लाह ने हम लोगों के लिए कोटा रखा हुआ है हर चीज़ का।
ठीक है
कोटा आप जितनी जल्दी पूरा करना चाहें पूरा कर लें, फिर उसके बाद बीमारियों में मुब्तला हूँ। या बहरहाल बहुत सारे जो कामयाब लोग हैं और यानी अगर सेहत भी उनकी अच्छी है, यकीनन हम उनको कामयाब मानते हैं, तो उन लोगों का ये है कि उन लोगों ने उस कोटे को पूरा नहीं किया 20 साल के अंदर, 30 साल
जिंदगी में बैलेंस
रखा, तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन उनकी जिंदगी रही। चलते हैं, ब्रेक लेते हैं और एक प्रोग्राम आप मुलाहजा फरमाइए। डॉक्टर उस्मान खालिद थोड़ी देर में हम लोगों को ज्वाइन करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ खान आप लोगों के सामने फिर से हाज़िर हूँ कुछ खास लेके। हम लोगों ने विज़िट किया शाहजहानाबाद, उसके बाद हम लोग वहाँ पे खारी बावली गए, हमने मसालों का स्वाद लिया, वहाँ से मसालों का जायका लिया, फिर उसके बाद हमने जो है यूनानी जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उसका जायका लिया, उसके बाद जो है हम आप पहुँचे हैं एकदम 21st सेंचुरी 21 जो सदवी सदी है उसमें पहुँच चुके हैं, सीपी में। सीपी जिसे कहते हैं कि पूरा बिज़नेस हब है, दिल्ली का दिल जिसे कहा जाता है, दिल्ली का दिल का खिताब जिसको दे दिया गया है, उसके बीचों बीच एक बावली यहाँ पे मौजूद है जिसको कहते हैं कि उसका जो मतलब बनाया गया था, उसको तामीर किया था 15वीं सदी से लेके 16वीं सदी के बीच में कोई राजा अग्रसेन थे जिन्होंने इसको तामीर कराया। हो सकता है कि इसका एक अकीदा है कि पहले जो है पानी की कमी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, इस चक्कर में जो है बहुत सारे कुएँ और इस तरह की जो है बावली जो है बनाई जाती थी, इससे जो दरियाफ्त हैं राजस्थान और गुजरात में जो है इस तरह की जो है बावली बनाई जाती थी। उसके बाद जो है ये जो ट्रेडिशन ये जो फरहंग है वो दिल्ली आया। इससे पहले भी जो है मैं आपको बावलियाँ वगैरह दिखा चुका हूँ, मैरोली हम लोग गए थे, वहाँ मैरोली में हम लोगों ने एक गंधक की बावली देखी थी, राजों की बावली देखी थी, हम लोग शायद पालम जाए वहाँ पे भी एक बावली है, बट इस जो बावली है इसका एक ख़ास मकाम है क्योंकि ये दिल्ली का जो दिल है कनॉट प्लेस बाराखंबा उसमें मौजूद है। इसमें मैं बता देता हूँ कि बावली का क्या यूज़ होता था, जब लोगों के पास एसी नहीं होते थे, कूलर नहीं होते थे, पंखे नहीं होते थे, तो लोग इसी तरह की जगहों पर आते थे, गर्मियों में आते थे, उससे जो है रिलीफ मिलता था लोगों को, इसी तरीके से जो है स्ट्रेस पर बैठा करते थे, शायर आया करते थे, पेंटर आया करते थे, कलाकार लोग हैं वो आया करते थे, उसके बाद अपने अपने यू नो नावल लिखा करते थे, शायरी लिखा करते थे। हम जो है नीचे जाएंगे और नीचे जाके इसका मुआयना करेंगे कि किस तरीके से ये बना हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग जो है अग्रसेन की बावली में यहाँ मौजूद हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ इसका मुआयना करने के लिए कि पहले जो है यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था, खैर बहरहाल अब पानी नहीं है, सूखी पड़ी हुई है, बट लोगों के लिए फिर भी जो है यहाँ पे लोग विजिट करते हैं, इसको शिरकत करते हैं, फैमिली वाले लोग भी आते हैं और जो रोमांस करने वाले जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो भी आते हैं, अपना जो है बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे जो है स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को जो है ये जगह मालूम है, तो इसलिए बहुत कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता, बट अगर आप इंटरनेट पे इसको खोजें तो आराम से ये मिल जाएगी। नीचे जैसा कि मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे कि ये जो पत्थर है ये वाला, इस तरीके से जो मैं पहले जो है मैं दिखा चुका हूँ कि हम लोग फतेहपुरी मस्जिद गए थे, वहाँ पे लाल पत्थर का जो है इस्तेमाल हुआ था फतेहपुरी मस्जिद को बनाने के लिए। मैं पहले जो 7 शहरों की एक मैंने कहानी बताई थी उसमें मैंने बताया था कि अरावली जो है दिल्ली के अंदर है, जो राजस्थान गुजरात और हरियाणा में होते हुए जो है दिल्ली में तशरीफ़ लाई है, वहाँ से जो है पत्थरों को तोड़ा जाता था, दूर से उनको मेहरौली बदरपुर जैसे इलाकों से जो है उनको लाया जाता था, उनको तराशा जाता था और इस तरीके से जो है उनको फिक्स किया जाता था। आज जो है 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच में ये बनी हुई बावली आज जो है तकरीबन 400 साल हो गए हैं मुस्तकिल ऐसे ही खड़ी हुई है। बस एक बात यह है कि इसमें पानी जो है वो सूख गया है, पर पानी के निशानात मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पानी के यहाँ पर कभी पानी था वो आप इससे देख सकते हैं कि यहाँ पर काई जमी हुई है। ये मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी है जिससे पता चलता है कि यहाँ पानी रहा होगा, इस तरीके से मिट्टी के अंदर काफ़ी नमी है जिससे पता चलता है कि यहाँ कभी पानी रहा होगा, और ये हरा निशान जो है ये वाला ये काई का निशान है, क्योंकि अक्सर पानी कहीं होता है तो वो अपनी छाप छोड़ जाता है कि हाँ वो कभी इस जगह पर मौजूद था। खैर हम लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं, मैं एक बार ऊपर की तरफ जो है मैं आपका निशान, मैं आपकी निगाह हम लोग दौड़ाएंगे कि हम किस तरीके से जो है ऊपर थे अभी फ़िलहाल, कितनी सारी स्टेयर्स ऊपर हैं और उससे वहाँ से जो है हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं और अभी भी हम लोग जो है नीचे जा रहे हैं। खैर मैंने जो स्टेप्स हैं, जो स्टेयर्स हैं, ये सीढ़ियाँ मैंने काउंट नहीं की, गिनी नहीं है, बट बहरहाल बहुत ज़्यादा होंगी। तो ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं एकदम नीचे डीप में। बावली का एक कॉन्सेप्ट है कि बावली में यहाँ तो पानी रहता ही था, मतलब लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने घर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पानी आता कहाँ से था? पानी बरसात का स्टोर होता था। उसके अलावा पीछे की तरफ कुआं है जिसे पुली से जो है पानी को खींचा जाता था, जिसमें पीने का पानी जो है हुआ करता था तो पीछे से लिया जाता था। बाकी जो नहाने के लिए, बाकी जो ज़िंदगी की ज़रूरी काम करने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती थी वो इस तरीके से यहाँ से लिया जाता था। पानी का जो लेवल है वो बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी बरसात हुई, उसी हिसाब से जो है वो ऊपर जाता था। खैर आप नीचे आइए, तो नीचे फ़िलहाल जो है यहाँ पर चमगादड़ों ने जो है अपना घर बना लिया है। नीचे थोड़ी सी गंदगी है, नीचे जाना मुनासिब नहीं है, तो फ़िलहाल हम लोग ऊपर की तरफ ही तशरीफ़ ले जाएंगे।
खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। मैं देख रहा था मैसेजेस, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भेजी हैं, लेकिन फैसल मुर्तज़वी साहब और इसके अलावा अपने लगारी साहब भेज रहे हैं, बाकी लोग भी अगर भेज रहे मैं बुरा नहीं मानूंगा, आप यकीन मानें। और काफ़ी हम पज़ीराई भी उसकी करेंगे और इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इस्तेफादा करेंगे। अभी फैसल
जो है वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते। हाँ, आप जितने कमेंट देना चाहें,
बिल्कुल जितना कमेंट देना चाहें हम बिल्कुल हम बुरा नहीं मानेंगे। इसमें मैं पढ़ता चलूँ, फैसल मुर्तज़वी साहब ने जो 5 मिनट पहले हम लोगों के लिए भेजा है, अच्छा ये आपके लिए है खुसूसी तौर पर कि अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका प्रोग्राम तब से देख रहा हूँ जब खुर्रम अकेले थे।
माशाल्लाह ये काफी पक्के बंदे हैं इन्होंने। हाँ, जो पुरानी बात बोली अलबत्त। हाँ, उस टाइम पे यार मेरी जो वो प्रेजेंटेशन होती थी प्रोग्राम में वो बहुत जो कमज़ोर थी, लेकिन आप तो खैर बहरहाल आप लोगों की मोहब्बतें हैं। हाँ, और हम कोशिश करते हैं हम लोग के बेहतर से बेहतर जो है प्रोग्राम को प्रेजेंट।
बिल्कुल से मेरा मतलब ये नहीं था कि आप कमज़ोर थी।
नहीं नहीं, मैं इनकी उस टाइम की मैंने कहा इनको याद होगा कि मैं कैसा था।
दूसरे लोग थे, साजिद रिज़वी साहब हुआ करते थे, बिल्कुल वो भी थे हुआ करती थी। और इसमें लगारी साहब ने भी एक और हम लोग के लिए भेजा है कमेंट, वो भी मैं पढ़ दूं कि रुके मैं ढूंढ रहा हूँ। सलाम, और इंसान की जितनी हिम्मत होती है उतनी उसकी कद्र और कीमत होती है। हसन भाई से गुजारिश है कि ईरान के किसी और शहर की सैर कराएं, इंशाल्लाह मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा। बहरहाल हम लोग की टीम होती है, मैं सिर्फ आपको नहीं घुमाता, साथ में कैमरामैन होता है और लोग होते हैं, तो बहरहाल इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश रहेगी कि ईरान का कोना कोना आपको दिखाएं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें इस मुल्क में, खजाने मुख्तलिफ छुपे हुए हैं, वो भी आपको बताएं।
वाकई देखने वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल हसन ने ठीक है, लेकिन ये है कि हसन की हमें यहाँ पर स्टूडियो में जरूरत होती है, तो आप लोग प्लीज़ ये हसन को इधर उधर मत भेजें। बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर उस्मान खालिक स्टूडियो में मौजूद हैं और आप लोगों के जानी पहचानी शख्सियत हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम की। आप लोगों को पता है तगज़िए के बारे में, गज़ाइयत के बारे में हमारे साथ बात करते हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर साहब हमारे साथ दूध के बारे में, तो चलते हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम,
कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर साहब दूध बड़ी अहम चीज़ है और आप इस पर जो है बात करना चाह रहे हैं। जी
अहम चीज़ है बिला शुबा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत
खोता
ही जा रही है।
अच्छा, इसकी वजह क्या है? और चीज़ें आ गई हैं या जो है ये कमज़ोर हो गया?
वजह
कुछ नहीं होता,
वजह इसकी यही है कि हम लोग कुदरती चीज़ों से, सिर्फ दूध ही नहीं जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं उनसे हटते जा रहे हैं।
सही,
तो उसमें ये भी एक चीज़ है। अच्छा, इस दूध एक इतना वसी मौजू है कि इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि दूध के गिजाई उस अज्जा क्या हैं और उनके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं उसके मुतलिक उम्मीद तौर पर लोगों को पता होता है। मैं ये आज बताना चाहूँगा कि दूध के जो है वो फ़वाद क्या हैं।
ठीक है,
ये उम्मीद तौर पर जो है वो चीज़ सामने आ नहीं पाती। दूसरी चीज़ ये कि आजकल लोगों में ये भी चीज़ पाई जाती है कि खुला दूध पिया जाए या डब्बे का दूध पिया जाए, इसको کسی اور پروگرام کے لیے اٹھا کر رکھیں گے کیونکہ یہ بذات خود کافی
ایک موضوع ہے.
جی بس یہ موضوع ہے.
صحیح.
دودھ کے متعلق، اجزاء کے متعلق، غذائی اجزاء کے متعلق شروع کرتے ہیں. یہ سب کو علم ہے، بچے بچوں کو پتہ ہے کیلشیم ہے،
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے دودھ میں آئرن کی تعداد جو ہے وہ مختلف پائی جاتی ہے. اس میں گائے کے دودھ میں سب سے کم ہوتی ہے اور بکری وغیرہ کے دودھ میں جو ہے وہ آئرن ڈفرینٹ اس میں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیلشیم، آپ کو پتہ ہے کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے یا ان کا بیلنس رکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے. کیلشیم کے ساتھ آپ کو فاسفیٹ بھی ملتی ہے.
ٹھیک ہے.
آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کیلشیم ہی صرف بونز نہیں بناتی، جو ایک کیمیکل سٹرکچر ہوتا ہے بونز بنانے میں،
بالکل
اس میں کیلشیم کے ساتھ ساتھ فاسفیٹ کا ہونا بھی ضروری ہے.
صحیح.
اور وہ بھی آپ کو دودھ میں مل جاتا ہے.
ٹھیک.
اس کے علاوہ پروٹینز، پروٹینس کی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. دودھ کی اکثریت 80% سے زیادہ دودھ کا حصہ جو ہے وہ پانی پر مشتمل ہے.
صحیح.
جو کہ آپ کی ہائیڈریشن،
پانی کی جو کمی ہے اس کو بھی پورا کر لے گا.
بھی جو پورا کرتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کیلشیم آپ کی باڈی میں اگر وٹامن ڈی ایک متناسب ریشو میں موجود نہیں ہے یا بالکل ہی موجود نہیں ہے، تو آپ کی آپ چاہے جتنا مرضی کیلشیم جو ہے وہ لیتے رہیں، وہ آپ کی باڈی میں ابزارب نہیں ہوتا اور وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتا.
صحیح.
تو اس کے لیے وٹامن ڈی کا بھی ہونا ضروری ہے. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ممالک میں خاص طور پر جہاں پر دھوپ اور یا سورج وغیرہ نہیں نکلتا یا بہت کم نکلتا ہے،
صحیح،
وہاں پر دودھ کو فورٹیفائی کیا جاتا ہے وٹامن ڈی سے. فورٹیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مصنوعی طور پر جو ہے وہ وٹامن ڈی ڈالا جاتا ہے.
اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے یہاں پر وٹامن ڈی کمی ہے؟
جس طرح آپ یورپین کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر سردیوں کے موسم میں یہ چیز کافی گمبھیر ایک رخ اختیار کر لیتی ہے کہ وہاں پر سورج نہیں نکلتا. اور آپ کو یہ چیز علم ہوگی کہ وٹامن ڈی جو ہے وہ ہماری باڈی خود بنا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے.
صحیح ہے. ٹھیک.
اس لیے ان ممالک میں اس چیز کو جو ہے وہ فورٹیفائی کیا جاتا ہے.
ہمارے ہاں اس کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب یا نہیں؟
ہمارے ہاں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً بہت سارے ممالک اور بہت سارے پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ جو ہے وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ دودھ میں وٹامن ڈی جو ہے وہ اس کو ڈالیں.
ٹھیک ہے.
فوائد کی طرف میں آتا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ ایک انتہائی غلط اور الٹا خیال ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دودھ، دہی، مکھن، ڈیری پروڈکٹس ہم نے اگر زیادہ لیں
جی
تو ہم موٹے ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے.
حالانکہ حقیقت میں چیز اس کے الٹ ہے.
اچھا.
دودھ اور ڈیری پروڈکٹس آپ جتنی زیادہ لیتے ہیں، اس میں دہی آ جاتی ہے، دہی خاص طور پر، مکھن ہو گیا اور پنیر ہو گیا. اس کے متعلق پھر انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور پروگرام میں بھی میں تفصیلاً جاؤں گا، لیکن یہاں پر صرف یہ بتانا چاہوں کہ ڈیری پروڈکٹس اگر آپ کافی مقدار میں کھاتے ہیں تو وہ اگر آپ باقی کھانے جو ہے وہ تھوڑا بہت آئلی کھا بھی رہے ہیں
جی
تو یہ اس چیز کے ضامن ہوتے ہیں کہ یہ اس کولیسٹرول کو یا فیٹ کو جو ہے وہ آپ کی باڈی کا حصہ نہ بننے دیں.
اچھا.
عمومی طور پر اور عورتوں میں بھی یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ عورتیں جو کہ دودھ، دہی وغیرہ کا زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ موٹی نہیں ہوتی ہیں آرام سے. ان پر موٹاپا آنا جو ہے وہ قدرے مشکل ہوتا ہے.
اچھا. جی سر، جو عام جو آپ نے خود بھی کہا کہ عام طور پہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ مکھن، دہی، لسی وغیرہ کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں وہ جو ہے ماشاء اللہ ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اتفاق اس کا جو کام ہے وہ الٹا ہے.
الٹا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ ان شاء اللہ آپ کی بھی بات چلائیں گے. ہم لوگ یہاں پر چلتے ہیں حسن کے پاس اور دیکھتے ہیں حسن ہمارے لیے کیا لے کے آئے.
جی شکریہ خرم، معاف کیجیے گا، ایک سوال بھی ہم لوگوں کے پاس آیا ہے تو میں انشاءاللہ چلتے ہیں، پہلے ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں سوال پوچھوں گا. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام صبح زندگی میں، اور ہمارا پروگرام جاری رہے گا، چینل چینج مت کریے گا، ہم لوگ ابھی یہاں موجود ہیں. جی خوش آمدید کہتا ہوں پھر سے آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. بہت ہی نیا آپ نے وہ دیکھا، ایک میوزک کلپ آپ نے دیکھی. اس میں سوال جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ گائے اور اونٹنی کے دودھ میں کیا فرق ہے، ایک تو یہ سوال ہو گیا. اور دوسرا میرا سوال ہے وہ یہ کہ آج کل مختلف پروڈکٹس مارکیٹ میں یعنی آ گئے ہیں، بازار میں آپ کو ملتے ہیں کہ اس میں یہ جو اسٹرا جو ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، اور آپ اس اسٹرا کو دودھ میں ڈالیں اور اس پئیں تو اس کا مزہ تبدیل ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی دنیا بھر میں یہ چیز پروموٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟
बहरहाल डॉक्टर साहब, ये जो गाय और ऊंट के ऊंटनी के दूध के बारे ये जो है इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी।
ये मालूम है ऊंटनी के ऊंटनी का दूध बहुत गर्म होता है।
ऊंटनी के मुतालिक मुझे ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि कंटेंट्स रेशियो के अंदर डिफरेंस है, मींस पानी और पानी की रेशियो जो है वो डिफरेंट होगी दूध के मुकाबले में। इसके अलावा जो प्रोटीन्स रेशियो है, कार्बोहाइड्रेट्स रेशियो है, वो डिफरेंट होगी। लेकिन यह है कि दूध अगर अमूमी तौर पर आप किसी भी जानवर का लें, बकरी का आप लेते हैं, भैंस का लेते हैं, वो हर लिहाज से मुकम्मल गजा है।
अच्छा,
मुकम्मल गजा से मुराद ये कि उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स, विटामिन्स जो सब
सारी चीजें मिलेंगी। अब क्या उनका रेशियो है तो वो सारी बात उसको पढ़ना है आपको कि भाई ये ऊंट का दूध है इसमें इतना अंदर रेशियो। ठीक, दूसरा ये डॉक्टर साहब, हसन ने जो पूछा कि ये जो स्ट्रॉ टाइप का डाला जाता है और वो टेस्ट के लिए होता है, कोई चॉकलेट टेस्ट होता है इसमें, वैसे जैसे आपके पास दूध है उसमें वो स्ट्रॉ डाल देते हैं, स्ट्रॉ तो नहीं होता, वो एक किस्म की कैंडी होती है मेरे ख्याल में लंबी सी, तो उसको हिलाते हैं तो वो उस कैंडी का टेस्ट उसमें आ जाता है। इसके बाद
असल में पिछला हमारा प्रोग्राम था मिनरल वाटर के मुतालिक, हम बात करते रहे और उसमें मैं प्लास्टिक की बात करता रहा हूँ,
सही है,
और पिछले भी प्रोग्रामों में मैं इस चीज़ पर बात करता रहा हूँ कि हमें कोशिश करनी होगी, बल्कि बहुत कोशिश करनी होगी कि हम वापस अपनी कुदरती गिज़ाओं की तरफ आ जाएं।
सही।
एक पिछले दिनों मैं एक चीज़ देख रहा था और वो काफ़ी, मतलब कि मैंने उसको काफ़ी गौर से और काफ़ी डीप जाकर सोचा, और वो चीज़ मैं जितना सोचता गया उतनी वो
दिलचस्प थी आपके लिए,
सच साबित होती गई।
अच्छा,
वो अंग्रेज़ी में थी कि एनीथिंग विच हैज़ टीवी एडवर्टीजमेंट,
ठीक,
You should avoid that thing. Means जो भी चीज जिसका आपको टीवी पर एडवर्टीजमेंट मिल रहा है,
ठीक है, टीवी पे एड आ रहा है,
वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है।
अच्छा,
और ये बात बिल्कुल जो है वो सच साबित होती है। मैं काफी इस चीज के ऊपर सोचा।
ये वही बात है ना डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अगर अगर इनका प्रोडक्ट या ये चीज इतनी अच्छी होती तो उनको एड देने की क्या जरूरत पड़ती।
असल में जी बिल्कुल, असल में ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, सब की सब पैसे की गेम है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कौन सा दूध इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैं पूरा एक प्रोग्राम करना चाहूँगा, और वो एक बड़ा ही लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि नई इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो चूंकि वसी मौजू है लिहाजा उस तरफ नहीं आते। अच्छा, दूध के इसके अलावा फ़वाद आपको मालूम है कि हमारे पुराने कल्चर में और बाज़ जगहों पर अभी भी दूध को औरतें इस्तेमाल करती हैं अपना स्किन वगैरह के उसके लिए। ये एक मिथ थी, लेकिन साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये बिल्कुल सही बात है। उसमें ये है कि दूध जो है वो आपके मसामों के अंदर जो है वो सीप इन करके वहाँ पर जो खटी पटी जो स्किन है उसको एक्सफोलिएट करता है, मींस उसको निकाल बाहर करता है, स्किन स्मूथ करता है। इसके अलावा जो है ये आपके डीएनए डैमेजेस जो फ्री रेडिकल्स करते हैं उनको भी जो है वो क्लियर कर,
जैसे कि जिल्द में मुख्तलिफ किस्म की चीजें लगाई जाती हैं, मसलन कभी उपटन का इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीजों को, तो दूध भी आप रिकमेंड करते हैं कि दूध भी अगर कोई अगर इस्तेमाल कर सकता है तो वो अच्छी चीज है।
जी बिल्कुल, ये तो सदियों से होता है, और ये फिरौन की बीवी क्लियोपेट्रा इसके मुतालिक काफी मशहूर था कि ये तो अपना हर जो बात लेती थी वो लेती ही दूध में थी, वो पानी नहीं इस्तेमाल करती थी।
बारह, लेकिन ये कि इसमें एक चीज जो आ जाती है, जैसे हसन भी इस चीज वो करेंगे कि जो है खाने की चीज है और उसका जाया होना होने का इसमें जो है वो एक फैक्टर आ जाता है। बारह, अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल एक जहन में उठा मेरे, वो ये था कि टाइम और पर महदूद है दूध, ये जो जितने भी हलाल जानवर हैं हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें वो तो नहीं है कि मसा आप ये कहें कि मसा फलां जानवर का दूध जो है वो नहीं पीना है, ऐसी कोई चीज है
नहीं।
बीमार होने का खतरा है, कहते हैं ना जी भेड़ का दूध है वो होता है बड़ा खट्टा होता है, इस तरह की चीजें
नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन यह है कि न्यूट्रिशनली जो है वो इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है,
ठीक है।
मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा गजाइत वाला जो दूध है वो बकरी का होता है,
ठीक है,
क्योंकि अगर आप बकरी को देखें तो बकरी अपनी खुराक के मामले में बड़ी चूजी होती है।
अच्छा, सही।
वो चुन चुन कर बेहतरीन घास खाएगी, और इसी वजह से जो उसका दूध पैदा होता है वो भी बेहतरीन दूध ही पैदा होता है,
सही है।
और आप ये चीज अक्सर देखेंगे खाना बदोशों के यहाँ के अपने यहाँ उन्होंने शायद दूसरे जानवर भी पाले हों, लेकिन अगर उनको खुराक मयसर ना हो तो बकरी का दूध निकाल कर सिर्फ उसी पर इक्तफा करते हैं।
सही, इसका मतलब ये बेहतरीन है इंसानों में।
जी बिल्कुल,
ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हम चल रहे हैं हसन के पास और देखेंगे हसन हमारे लिए क्या लिखे।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। बहुत ही जबरदस्त बात की। वैसे बाज वक्त हमने बकरियों को कूड़े पे कूड़े के ढेर पे भी देखा है, वहां पता नहीं क्या जाकर ढूंढती
है। वो बकरियां जो हैं वो मेडिकल साइंस में कहा जाता है म्यूटेट हो चुकी हैं, उनके जो है जीन जो है वो तब्दील हो चुके हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता।
हो सकता है इसका भी इम्कान है। तो एक तो ये चीज हो गई, दूसरे ये वो क्लियोपेट्रा को अब हम कहाँ से ढूंढने के जाके उससे कहेंगे आप इसराफ मत करें, उनकी जान छोड़ दें।
इस्तेमाल के बारे में बात कर रहा था।
हाँ बाकी है ये चीज आजकल भी है कि मतलब फला चीज लगा लें तो बहुत बेहतर है, लेकिन जब खाने पीने की चीजें बहरा
आप कंपनीज देखें कि आपकी अक्सर कंपनीज जो है वो ये एडवर्टाइज करती हैं कि
हम दूध दूध और नारियल और ये इस तरह की चीजें। बिल्कुल आपने सही कहा, हर जो चीज नेचुरल है आजकल इत्तेफाकन वो जैसे कि आपने कहा वो एडो में अक्सर ये चीज देखने को मिल रही है, कोई जो है अदरक डाल रहा है, कोई लहसुन डाल रहा है शैम्पूओं में साबुन। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी।
वाकई ये भी मेरे लिए सवाल है, बाद में मैं जाके इसके बारे में ढूंढूंगा और नाजरीन को जरूर बताऊंगा। एक कमेंट भी आया लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में पढ़ूंगा। नाजरीन हमने आपके लिए जो चीजें तैयार की हैं उसमें बहुत ही एक दो बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें, थोड़े हम लोगों के मौजू से यानी इस लिहाज से हट के हैं कि शायद कह सकते हैं कि थोड़ा डिजिटल दुनिया में हम आपको लाएंगे। वैसे ये तस्वीर अगर आप देखें, ये वाली नहीं दूसरी जो थी उसमें जो है, चलें इसी के बारे में पहले आपको बताते हैं, ये भी काफ़ी मज़ेदार है। अब देख रहे हैं बज़ाहिर एक तस्वीर है बहुत ही खूबसूरत, किसी ने ली है, फ़ोटोग्राफी का कमाल है। लेकिन इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये फ़ोटोग्राफी नहीं है बल्कि एक पेंटिंग है। कोरियन पेंटर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जहमत के, मैं अपने साथियों से चाहूँगा कि इसमें जूम करें ताकि यानी ये जो आर्ट का जो कह सकते हैं कि नमूना है वो हमारे नाज़रीन सही तौर से देख सकें और इसमें अंदाज़ा लगाएं कि बाज़ लोगों के हाथ में कैसा कह सकते हैं कि आर्ट होता है और ख़ुदा ने क्या क्या सलाहियतें उसके हाथ में रखी होती हैं और हम लोग वो नहीं करते। जुंगवॉन साहब जो हैं उन्होंने कोरिया में ये काम शुरू किया है और बहुत ही ख़ास चीज़ उनकी ये है कि आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये तस्वीर यानी ये कैमरे के ज़रिए ली गई तस्वीर है या एक पेंटिंग है। और इसमें ख़ास चीज़ उन्होंने इसका ख्याल रखा है कि बिल्कुल वो जो बिल्कुल यानी छोटे छोटे चेहरे के जो हिस्से होते हैं जो हम लोग के आँखों से नज़र आते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। यानी तकरीबन हम कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि कोई अंदाज़ा लगा सके कि ये एक तस्वीर है या एक फ़ोटो है। और इसमें ख़ास चीज़ इनकी यानी काम की ये है कि इन्होंने 10 साल की उम्र से ये काम शुरू किया था और इनका मकसद था कि यानी इन्होंने जो फ़ाइन आर्ट का पूरा सब्जेक्ट इन्होंने जो पढ़ा था उसमें इनका मकसद ये था कि बहुत ही दूसरी फील्ड की जानिब जाएंगे और ये सिर्फ एक तफरीही हद तक रखेंगे, लेकिन फिर ये इन्हीं का कह सकते हैं कि पेशा बन के रह गया और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी थे।
लेकिन तो इस ये जो बाल बाल इस तस्वीर में जो आपने दिखाए ना
जी,
ये जो पिछली थी वो थोड़ा सा वो लग रहे थे कि पेंट शुदा है जो
अच्छा। नहीं, आखरी तस्वीर इसकी शायद वजह ये है कि मसलन थोड़ा पिक्सल्स उसके वो हो गए, वरना जो जो मैंने तस्वीर देखी आम मॉनिटर पे जो देखी जा सकती है, इनका नाम मैं फिर से बता दूंगा जो लोग देखना चाहें, काफ़ी इस तरह की पेंटिंग्स मौजूद हैं। जुंगवॉन साहब हैं वहाँ के, कोरिया के, साउथ कोरिया के, तो उन्होंने ये तस्वीर बनाई है और ये जिसे कह सकते हैं कि जो तारीखी जो मुख्तलिफ शख्सियात थी उनके बारे में भी है। तो चलते हैं एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा। फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, ये क्या है आप बताइए। तो इसमें मैं इससे पहले कि आप लोग जवाब दें या उधर से जवाब आ जाए, आप बताइए क्या ये।
मुझे फूल लग रहा है,
फूल नहीं लग रहा, ये प्याज का छिलका है और इसमें जो है बहुत सारे छिलके जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़वाद होते हैं और उसमें से एक ही जो है ये प्याज का छिलका है जो बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब है। उसको यानी कहा जाता है कि मुख्तलिफ सलाद के साथ अगर आप शामिल कर लें, जो बज़ाहिर हम लोग बहुत आसानी से हम लोग फेंक देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो इसमें चीज़ें कही जा रही हैं कि वो मुख्तलिफ जो दिल की बीमारी है उसको रोकने के लिए बहुत मुनासिब है और इसके अलावा इसमें कैंसर के यानी जो सेल्स जो डेवलप होते हैं उसमें उसको रोकने के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अलावा जो और छिलके जिसकी चीज़ के बहुत मुफीद हैं, इसके बारे में वैसे हमने शायद आपको बताया, मुझे सही तरह से नहीं बताया था हमने, लेकिन बहुत ही मुख्तसर तरीके से हमने बताया था कि तरबूज का जो छिलका होता है इसमें खुसन ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। खुसन तरबूज खाने के बाद वो देखा होगा थोड़ी गैसेस जैसे बनने लगती हैं, तो वो उसको दूर करने के लिए अगर आप उसका ये हिस्सा खा लें ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बहुत खा लें तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। इसके अलावा मैं जल्दी जल्दी बताता चलूँ कि आलू के छिलके का भी आप यानी चिप्स बना सकते हैं, उसको दूसरे सलाद इन सब में शामिल कर सकते हैं, वो भी मज़ेदार भी होता है और बहुत उसमें तकरीबन कह सकते हैं जो प्याज में खवास होते हैं उसमें भी मौजूद होते हैं। जो आखिरी चीज़ मैं बताऊंगा वो उसके बाद संतरे के बारे में तो आपको मालूम भी होगा, लेकिन ये जो गाजर के जो पत्ते होते हैं उसमें भी जो होता है बहुत ज़्यादा फ़वाद होते हैं। कहा जाता है कि उसमें जितने गाजर में यानी मुख्तलिफ फलों इन सब में आयरन मौजूद है, अकेले सिर्फ उसके पत्तों में मौजूद है लेकिन हल्का कड़वा होता है, तो इसलिए आप किसी सलाद में उसको शामिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त हसन, बहुत मुफीद आपने बातें की। सिर्फ यहाँ पर मैं ये बताते चलूँ कि अगर आप बचपन से मिसाल के तौर पे कि आलू के छिलके नहीं खा रहे, मिसाल आप आलू को जब पकाते हैं चिप्स बनाते हैं तो छिलके उतार के खाते हैं, तो एकदम से उसको शुरू करने में कुछ मसाइल पेश आ जाते हैं कि कहा जाता है कुछ चीज़ों के छिलके जो है हमारा बदन हज़म नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप शुरू से खा रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में जो है उसमें
कोई भी नई चीज़ होती है आपकी बॉडी को अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है।
डॉक्टर साहब, दो मिनट का वक्त है हमारे पास।
अच्छा, दूध के मुतालिक एक और चीज़ ये है, पहले भी एक प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ की थी, आप सारा दिन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, आपके मसल्स कॉन्टीन्यूसली जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार रहते हैं,
ठीक है।
रात को सोने से पहले अगर आप 1 से 1.5 गिलास गर्म दूध का पिएँ,
ठीक है,
तो ये दूध ना सिर्फ आपको एक बेहतरीन नींद
अच्छा
मुहैया करता है,
सही।
वो लोग जिनको रात को नींद सही तरीके से नहीं आती, नहीं या नींद आती नहीं है, उनके लिए ये बेहतरीन दवा है। और ये है कि वो जो पूरी दिन में आपके मसल की टूट फूट हुई होती है उन सब को ये रिपेयर करता है। आप सो रहे होते हैं लेकिन दूध आपकी रिपेयर का काम जारी रखता है। इसके अलावा दूध को एसोसिएट किया जाता है अच्छे ख्वाबों के साथ भी,
अच्छा,
कि ये आपको अच्छे ख्वाब भी जो है वो
नफ्सियाती तौर पे भी असर डाल रहा है
जी। ये एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन की वजह से होता है जो कि आपके ब्रेन में एंटर होता है। इसके अलावा अगले दिन जब आप सोकर उठते हैं तो तब भी आपके लिए ये एक खुशगवार मूड का जो है वो बायस बनता है। अच्छा, दूध जैसा कि मैंने मोटापे की बात की, मोटापा जो है वो ये कम करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कॉन्टेंट्स जो है वो कम करता है, ख़ास तौर पे दिल के मरीज़, वो मरीज़ जिनको कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल की बीमारियाँ हुई हों या शरियानों की बीमारी या स्ट्रोक्स जो हैं उनमें ये कम हुआ है, रिसर्चेस की गई हैं उसमें कम पाया गया है। इवन के उन लोगों के जो दिल के मरीज़ थे उनको दूध दिया गया और उनमें ये देखा गया कि उनके अंदर जो दिल की बीमारी थी उसकी संजीदगी में भी जो है वो काफ़ी फ़र्क हुआ। और वो लोग जो कि जिन्हें इस चीज़ का जिन पर ख़तरा था कि इनको दिल की बीमारी पड़ सकती है, वो उस ख़तरे की हदूद से जो है वो बाहर निकल आए।
सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुफीद गुफ्तगू आपके साथ रही। सिर्फ एक जुमले में डॉक्टर बताइएगा कि दूध को जिसमें दूध में कुछ लोग पिस्ते डाल के, कुछ बादाम डाल के, कुछ चॉकलेट डाल के पीते हैं, कोई नुकसान तो नहीं है इस चीज़ का?
चॉकलेट अगर आप डालकर पीना चाहें तो कोशिश करें कि आपको प्योर चॉकलेट मिले, लेकिन वो मिलती नहीं है और वो महंगी भी होती है,
चीनी होती है सारी उस चॉकलेट
जी, बिल्कुल। लेकिन अगर आप जो दूसरी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर बादाम पिस्ता, बहुत अच्छी चीज़ें हैं,
ठीक है।
और रात को जब आप दूध गर्म करके पिएं तो उसमें कोशिश करें कि आप शक्कर ज़रूर डालें और हो सके तो शक्कर के बजाय गुड़ डालें।
गुड़ डालें,
गुड़ के अंदर क्योंकि बाज मिनरल्स भी होते हैं जो कि आम रिफाइंड चीनी के अंदर जो है वो मौजूद नहीं होते। एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, लोगों में अक्सर ये बुरी आदत पाई जाती है कि सुबह सवेरे उठते साथ ही निहार मुँह जो है वो दूध पी लेते हैं, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका पूरा निज़ाम जो है वो धर्म भरम करके रख देता है।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू आगे चलाएंगे, बहुत अहम मौजू है और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि आप जो है स्टूडियो में तशरीफ लाए।
अच्छा, एक सवाल भी पूछा गया है हम लोगों से तो उसमें मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जवाब इसका दे दिया गया है कि बकरी का दूध जो है वो बच्चों को सुबह क्यों ज्यादा सबसे ज्यादा दिया जाता है, सबसे
इसके बारे में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कहेंगे कि ये जो जानवरों के दूध हैं इसके बारे में अगर हमारे नाज़रीन के लिए एक अलहदा से आप प्रोग्राम रखें तो बहुत,
अगर इस मामले में मुझे सवालात मिल जाएं,
ठीक है,
ताकि मैं
जी जरूर जी सवाल
जो सवाल होंगे आपकी खिदमत में हम दे देंगे अगले हफ्ते, आप जरूर जवाब दीजिएगा। नाज़रीन अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि रब्ता हमारा हुआ है टेलीफोन लाइन के जरिए अपने एक अजीज नाज़रीन में से एक से, तो मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। आप थोड़ा सा जोर से अगर बोलें तो आपकी आवाज़ बहुत बेहतर आए, और आप नाम बताइए और कहाँ से फोन किया है आपने?
हाँ जी, रजा जाफरी एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी, मियाँ जनों पाकिस्तान से।
और खैरियत से आप?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम के पेश करने पर।
बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ज्यादा सूदमंद है आम लोगों के लिए भी, और जो लोग अपनी सेहत बेहतर करना चाहते हैं उसके हवाले से भी, तो मैं आपको इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
बहुत शुक्रिया,
बहुत अच्छे हैं आप अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के हवाले से, यानी एक हफ्ते का हम लोगों का मौजू चल रहा था वो है यानी सही तौर से राय देना, आपका यानी क्या रहता है कि आम हालात में आप ज़्यादा राय देते रहते हैं, जिसको जो मिल गया उसको पकड़ लिया राय देने लगे, या नहीं बहुत ही खास लोगों को राय देते हैं और फैसला आप सही करते हैं?
उसमें ऐसा है कि भाई एक तो नेचर है ना हर बंदे, जहाँ पर कोई भी मौजू आया तो वो बंदा ये चाहता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है उसके मुताबिक वो दूसरे को मशवरा जरूर दे दे।
जी।
तो इस हवाले से अपनी राय को महफूज भी रखना चाहिए और उसी जगह अपनी राय देनी चाहिए जहां आप समझते हो कि किसी मामले को बेहतर अंदाज में जानते हो, तो आप उसमें राय देनी चाहिए।
अच्छा नज़र जाफरी साहब, एक जो सवाल मैं पूछना जल्दी से पूछाऊंगा कि कहा जाता है कि अगर आप किसी की गलती के ऊपर कोई राय कर देते हैं, बात करते हैं कि जी फलां बंदे ने ये गलती की, गलत किया फला, क्या ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि क्या ऐसा भी तो हो सकता है कल को यही गलती हम कर बैठे?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि भी हमें वही राय जो दूसरों के लिए रखते हैं वो अपने सामने भी रखनी चाहिए, और उसी गलती के हवाले से जो सजा जजा का मसला है उसको अपने लिए भी वही ख्याल करें, वही बेहतर ख्याल करें कि जो दूसरे के लिए ख्याल कर रहे हैं, तो इसीलिए वही राय देनी चाहिए जो बेहतर हो और सही हो।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया रजा जाफरी साहब। डॉक्टर साहब से का तो कोई सवाल नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं भी यानी शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने फ़ोन किया, और इंशाल्लाह हमेशा हम लोगों से रابطے में रहिएगा, फेसबुक पेज के जरिए भी आप वो कर सकते हैं, आपके कमेंट्स हम ज़रूर पढ़ेंगे, और ये कि आपने वक्त दिया हम लोगों को, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से। तो नाज़रीन चलते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मरहूम नासिर अब्दुल्लाही की आवाज़ में आपने मेरा लिए वीडियो क्लिप आपने देखी, और मैं बताता चलूँ कि हसनैन साहब ने एक हम लोगों को मैसेज भेजी है, और उसमें उन्होंने लिखा है 21 मैंने पहले मैं दकीक तौर पर अगर बता दूं, उन्होंने लिखा है गुजारिश है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत और तारीखी मकामात पर भी कोई प्रोग्राम करें, क़िले अलमूत ईरान की भी सैर करवाएं। बहरहाल बल्तिस्तान में मैं वादा नहीं कर सकता, यानी बहरहाल आदमी बेकार वादे क्यों करें, बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए वहाँ पर। बहरहाल आपको हालात का अंदाज़ा है उस इलाके में, यकीनन अमन है, लेकिन फिर भी हम लोग मसाइल का सामना है, लेकिन ईरान के मुख्तलिफ जगह और तेहरान के मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम जल्द अज जल्द पेश करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन उसके साथ साथ ये है कि आप जो है आप खुद वहाँ की तस्वीर, वहाँ की वीडियोज हमारे लिए भेज सकते हैं, और ये मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका, और हम हमेशा यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ जाहिर बात है कि यहाँ से उठ के जाना और एक और जगह पर प्रोग्राम करना थोड़ा सा सख्त होता है। हम लोग तेहरान स्टूडियो से यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक दूसरे मुल्क जाना थोड़ा सी कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, तो उसमें बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल से कैमरे से वीडियो फोटोज़ बना के हमें डेली भेजें, और मैं इस चीज़ को आपको वादा करता हूं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो फोटो होगी वहाँ की उसको हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें।
अच्छा एक और चीज़ मैं बताता चलूँगा, हमारे साथियों ने अभी बताया कि बहुत ही अजीज शख्सियत से हमारी गुफ्तगु होने जा रही है टेलीफोन से, वो हैं एजाज हुसैन साहब। काफी दिन से उनको हमसे गिला था कि हम लोग रابطہ नहीं कर लीजिए, एजाज हुसैन साहब आपसे रابطہ हमने कर लिया, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप लोगों के प्रोग्राम देखता हूँ माशाल्लाह, ये प्रोग्राम है पूरी फैमिली के साथ आदमी देख सकता है आराम से बैठ के, और करके ये सुबह का जो प्रोग्राम शुरू हुआ है इसमें बहुत अच्छे, यानी एक तो लाइव प्रोग्राम चल रहा हो रहा है, इसमें रابطہ जो रहता है फेसबुक के जरिए और दूसरे मोबाइल हो रहा है या फोन के जरिए से, ये बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ये फैमिली का, जबकि इस तरह कोई भी दुनिया भर में नेटवर्क, क्योंकि हम यहाँ पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, कोई भी चैनल इस तरह का नहीं है जो अपने नाजरीन को आपके साथ शेयर करे।
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन साहब। बहरहाल इसमें यह था कि कुछ दिनों से जो हम आपसे रابطہ नहीं कर पा रहे थे वो कुछ फंदी मसाइल की वजह से था, लेकिन अब हम लोगों का रابطہ हो गया, बहुत खुशी है कि आप हमें अपने यानी बहरहाल अपने जो आपका घराना होगा उसमें अगर अंदर आने की इजाज़त दे रहे हैं एक चैनल के ही जरिए, मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक चीज़ आपके यानी अभी घर वाले साथ आपके बैठे हैं इस वक्त?
जी हाँ जी हाँ बिल्कुल।
अच्छा तो उनका सलाम यानी मेरा सलाम उनको उन तक पहुंचाइए, और बहरहाल अगर किसी और से बात करवाना चाहे तो हम लोग बात करने के लिए तैयार।
जी हाँ, ये असल में ये टाइम होता है
अच्छा
घर में किचन में खातिन मसरूफ भी होती है और ड्रामा आपके प्रोग्राम भी देख रही होती है।
अच्छा अच्छा अच्छा
तो आपके यहाँ नाश्ता वगैरह का तैयार हो रहा होता है और टीवी चला होता है।
चले फिर नहीं मैं फिर आपको जहमत नहीं दूंगा घर वालों को, वो अपने काम में भी मसरूफ रहे और हम लोग का प्रोग्राम भी देखते रहे। और बहरहाल फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं
जी, आपने हमसे राय देने के बारे में आप कहना चाहेंगे जी साहब?
जी हाँ, राय तो अल्लाह ताला जो देखे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूस किया जिसकी अमूल अंजाम पाते थे, पर उसके बाद भी पैगंबर अकरम ने अपने असहाब को मशवरा लेने का और एक दूसरे से पैगंबर अकरम जो मुकम्मल खुदा से मरबूत एतबार था जिब्रील अलैहिस्सलाम के, मगर उसके बावजूद भी मशवरे बात ने बहुत अहमियत दी है।
सही,
तो इस तरह बल्कि चीज नहीं है जिनको मिल जानी वल्ला तमाम अहकाम मिलते रहे मगर उसके बावजूद मशवरे को इतनी अहमियत दी।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया इजाज साहब आपने कॉल किया, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके और हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया इजाज हुसैन साहब। नाजरीन एक चीज़ मैं बताता चलूँ वो ये है कि आपके फेसबुक कमेंट जो आप मुख्तलिफ भेज रहे हैं और जो यानी मौसूल हम लोगों को हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम में भी उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। वो सवाल जो दूध के हवाले जो किए गए थे उसमें भी, और अपने एक सवाल आखिर भी आया था अपने फैसल साहब का और उन्होंने वही उसी का बताया था कि आजकल हमें नकली दूध बना जैसे जायका असली दूध सा होता है लेकिन उसमें फॉस्फोरस और मैं पढ़ नहीं रहा पता नहीं किसी का पाउडर डाला जाता है, तो वो जो है बहरहाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते प्रोग्राम भी जरूर देखिए उस्मान खालिक साहब का, यकीन आपको अपना जवाब जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता चलूँ इस वाले के अगले हफ्ते का मौजू
जी, अगले हफ्ते का मौजू जो है हमारे जिंदगी में क्या मकसद है, मकसद रखना चाहिए ही रखना चाहिए, किस तरह मकसद को इंतखाब करना चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह पूरे हफ्ते हम लोग बात करेंगे
इंशाल्लाह। और अगले हफ्ते एक और मुनासिबत भी है, वो है अभी वक्त है तो आराम से मैं
जी बिल्कुल,
वो ये है कि अगले हफ्ते जो ईरान पर हमला हुआ था साम हुसैन के बासी अफवाज की जानिब से अमरीका और तमाम अमराज के यानी कह सकते हैं कि नुमाइंदगी के जरिए वो हमला हुआ था, तो उसमें उस हफ्ता मनाया जाए हफ्ते दिफाए मुकद्दस, और ईरान ने जो यानी फा शुरू किया एक मकसद था, वो मकसद क्या था वो इंशाल्लाह आपके यानी अगले हफ्ते का प्रोग्राम देखे उसके हवाले गुफ्तगू करेंगे, और आप क्या समझते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हमें जरूर बताइए।
आप लोगों की राय है वो बहुत जरूरी होती है, जैसे मैंने अभी ये भी कहा कि अगर तस्वीर भेजना क्योंकि आपका प्रोग्राम है और जैसे जाओ साहब ने भी पूरी कोशिश करते हैं कि जितना आप हमारे प्रोग्राम आ सकें उतना ही प्रोग्राम मजा आता है, जितना आप तस्वीर भेज सकते हैं रिकमेंड भेज सकते हैं अपनी बातें बहुत मजा।
अच्छा, नीचे के मौजू के बारे में आपने बताया
जी, सनेचर का मौजू जो है वो तर्ज जिंदगी के बारे में हम बात करके हदफ माफ कीजिएगा ये जो हमारा मकसद क्या है जिंदगी उसके बारे में बताया जाए,
घराने का इक्तिसाद
जी, ये दोनों जो है मौजू
हम यकीनन एक बहुत ही अजीम मेहमान को हम दावत देंगे, तो हमारा प्रोग्राम आप देखते रहिएगा, कल हम लोग रिपीट प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।